खुदावन के जलाली नाम में तमाम कलीसिया की सलामती हो। आज की इसी सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है ग्रेस बाइबल चर्च आरवाला में। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की रोशनी में उन सच्चाइयों को सीखें जो खुदा ने आज के दिन हमारे लिए तैयार की हैं, उन भेदों को सीखें, खुदावन की हजूरी में झुक जाएंगे और अपने आप को उसके हजूर खाली कर देंगे, क्योंकि वो खाक सरों के दिलों पर निगाह करता है और उन्हें अपनी बरकतों से, नेमतों से भरता है, और खासकर अपने रूहुल कुद्दस की कुदरत के बायस हिकमत और दनाई बख्शता है, ताकि वो मसीही जिंदगी को फतेहमंद जिंदगी समझकर गुजार फतेहमंद जिंदगी गुजारने वाले बने, उस जिंदगी को समझे जिसमें फतह है। आए हम खुदावन के हजूर झुके। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप नामी आयत के मुताबिक अपने अपने दिलों की हालत का जायजा लेंगे ताकि रूहुल कुद्दस से भर जाएं। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। तेरे नाम की हमद, तेरे नाम की सताइश हो। आज जो कुछ भी तेरे कलामे एकदस में से सीखे, हम सब की भलाई का वायस हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हम कलामे खुदा में से देखें, जैसा कि हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्दस कौन है। हमने इसके बारे में सीखा रूहुल कुद्दस कब ईमानदारों को हासिल होता है। हमने इसके बारे में सीखा रूहुल कुद्दस की सुकूनत गाह ईमानदार हैं। हमने इसके बारे में सीखा और रूहुल कुद्दस की कुदरत ईमानदारों को बख्शी गई है ताकि वो जमीन पर मसीही जिंदगी बसर करें और खुदा बाप के मकसद, मर्जी और मंसूबा को अपनी जिंदगी में पूरा करें। आज हम सीखेंगे और हमने सीखा था कि किस तरह ईमानदार यीशु मसीह के हम शक्ल बन सकते हैं। आज हम खुदावन के कलाम में से फिर रूहुल कुद्दस के बारे में सीखेंगे कि रूहुल कुद्दस की कुदरत में ईमानदार किस तरह उन बरकात को, उन नेमतों को, और खासकर वो ताज जो इज्जत का है, जो शोहरत का, रास्तबाजी का, जिंदगी का, जलाल का, खुशी और फखर का और निगाहबानी का ताज है, उन्हें किस तरह हासिल कर सकते हैं। आज उन सारे अनामात और अजर के बारे में सीखेंगे जो ईमानदारों को हासिल है। जैसा कि हमारा मजमून है सेट इफ़सियों के खत में से हम मुतालिया कर रहे हैं, और इफ़सियों दो बाप उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो, यानी कि हर एक ईमानदार, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, यानी कि खुदा की सकूनत गाह बने। और सिर से जो हमारा मतलब है ये है कि मसीह यीशु में हमारी हालत, हमारा मुकाम, हमारी शख्सियत के हम कौन हैं, हमारी शिनाख्त के हम क्या हैं इस जमीन पर। और ये सादा सा मफहूम हमारे सामने आता है सिट से के शगिर्द की सूरत इख्तियार करके यीशु मसीह के हम शक्ल बनना। शकिर्द के बारे में हम जब देखते हैं, हमारी इस दुनिया में बहुत से तालीमी अदारे हैं जिनमें 6 माह का, साल का, 2 साल का और 3 साल का कोर्स मौजूद है कि शगिर्द के बारे में सीखे कि वो किस तरह शगिर्द बन सकता है। और बहुत दफा ये बहुत ही फायदे की बायस बनता है ईमानदारों के लिए। लेकिन शगिर्द का जो सादा सा मतलब है बाइबल मुकद्दस में, वो 6 माह या 1 साल या 2 या 3 साल का कोर्स नहीं, बल्कि मसीही शगिर्द की जिंदगी इसका मतलब है कि अपनी पूरी जिंदगी को अपने उस्ताद के ताबिया करना, अपनी पूरी जिंदगी को अपने उस्ताद के ताबिया करना और उसके हम शक्ल बनना। ये मसीही शगिर्दियत है जिसमें पैरोकारी करनी है अपने मालक खुदावंद की, उसके मानद बनना है। और ईमानदार जो यीशु मसीह पर जब ईमान लाते हैं, रूहुल कुद्दस का मस्कन खुदा रूहुल कुद्दस की कुदरत ताकत हिकमत और दनाई हासिल होती है, ताकि रूहुल कुद्दस के बायस उन गहरी सच्चाइयों को सीखने वाले बने, उन भेदों को सीखने वाले बने जो मसीही जिंदगी में बहुत ही जरूरी है कि मसीह के हम शक्ल बने। जब हम नए अहदनामा में लूका की इंजील उसका छठा बाब देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है मेरे साथ निकालें। हम सीख रहे हैं कि मसीह के हम शक्ल बनना। छठा बाब लूका की इंजील उसका छठा बाब उसकी 40वीं आयत में लिखा है, शकीर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता बल्कि हर एक जब कामल हो अपने उस्ताद जैसा होगा। कामल होने से मुराद के जब वो मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो जाए, तैयार हो जाए कि अब वो चलने के लिए, अब वो तैयार है कि उस जंग को लड़े। इससे पहले कि उस जंग को लड़े उसे वो सारे दौ पेज, उसे वो सारी बातें सीखने की जरूरत है जो कि हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी के बारे में, कि ये है कि मसीही जिंदगी के बारे में सीखें ताकि हमारी जो दौड़ सलीब से शुरू होती है वो उस अजर तक पहुंचे, उस अजर को हासिल करें जो फतामंद जिंदगी गुजारने पर हासिल होगा। मैंने आपको पहले सिखाया था कि जब यीशु मसीह अपने तख्त अदालत पर आएगा, जब वो अपना तख्त लगाएगा और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब वो अजर देने के लिए आएगा तो बहुत कम लोग उसके तख्त के सामने खड़े होंगे जो इन अल्फाजों को सुनेंगे कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटी, बहुत अच्छे, तुमने उस फतह में जिंदगी गुजारी, तुमने उस दौड़ को खत्म किया, तुमने ईमान को महफूज रखा। दो बहुत सी जरूरी और बुनियादी बातें हैं जो मसीही जिंदगी में बुनियादी हिस्सा रखती हैं फतामंद जिंदगी गुजारने के लिए। अगर आपसे या किसी और सेमिनरी स्टूडेंट से या पास्टर साहबान से पूछ लिया जाए कि मसीही जिंदगी में दो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो मसीही फतामंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के पास जवाब नहीं होगा। वो बहुत सी और सी बातों को और सोचना शुरू करेंगे कि हां, हमने सेमिनरी में इसके बारे में सीखा था। दो बहुत ही अहम बातें हैं जो मसीही फतामंद जिंदगी गुजारने की बुनियाद है, और वो कौन सी हैं? बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम और रूहुल कुद्दस की कुदरत। क्या लिखा है यूहन्ना की अंजील में? खुदा रूह है और जरूर है कि प्रस्तार से मुराद क्या है? प्रस्तार यानी के ईमानदार, उसकी प्रस्तश यानी के उसकी इबादत, उसकी पैरवी, उसकी अकीदत, उसके हुक्मों को मानना, उसके बारे में सीखना। किसे? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार यानी के ईमानदार, रूह और सच्चाई से। खुदा रूह है और सच्चाई क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने सच्चाई के कलाम के वसीला से इन्हें मुकद्दस कर। खुदा का कलाम वो सच्चाई है जो मसीही फतामंद जिंदगी गुजारने की बुनियाद है। दो चीजें बुनियादी मसीही जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखती हैं, فتح مند زندگی گزارنے کے لیے کون سی دو باتیں؟ خداوند کا زندہ کلام جو ہر ایک صحیفہ خدا کی سانس یعنی کہ اس کا لہام ہے. وہ کس لیے لکھا گیا؟ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں ان الزاموں کے بارے میں اور ہماری اصلاح کے لیے، تاکہ ہم ہر ایک ایماندار کیا بنے؟ کامل بنے. اور خدا کا کلام یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن آج بہت سے اپنے علم کے باعث اس باتوں بنیادی سادہ سی دو باتوں کو بھولے ہوئے ہیں. اسی کے باعث آج اس جگہ پر آپ کو زیادہ لوگ نہیں دکھ رہے، کیونکہ جب دکھ، جب مصیبت، جب تکلیف آئی تو یسوع مسیح کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا، اس کی پرستش، پادری صاحبان کو ہدیہ دینا شروع کر دیا، بہت سے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے. یہ مسیحی زندگی نہیں ہے، یہ مطلب پرستی کی زندگی ہے جس سے خدا خوش نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی زندگی کے لیے جو کہ صرف مطلب پر گزاری جائے. خدا کے پاس اجر ہے، میں نے آپ کو پہلے سکھایا تھا. ہم نے سیکھا کہ دو باتیں ہیں جو بنیادی ہیں کہ فتح مند زندگی گزاریں، خدا کا کلام اور روح القدس کی قدرت یعنی کہ روح اور سچائی، اور پرستار کون ہے؟ ایماندار. جب یہ تین باتیں، جب تین باتیں صحیح طریقے سے کی جائیں تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. پرستار جب روح یعنی کہ روح القدس کی رہنمائی میں معمور ہو کر سچائی سے، سچائی کے کلام کے وسیلہ سے انہیں ہزاد کر، اور کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8:32 میں، اور تم سچائی سے واقف ہوگے یعنی کہ کلام سے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہم مسیحی ایمانداروں کو خدا کی طرف سے یہ درجہ، یہ مقام، یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی ماند بنے، اس حیثیت کو، اس شناخت کو، اس مقام کو جو آدم کے گناہ کے باعث بنی انسان نے کھویا، یسوع مسیح میں اب وہ شناخت، اب وہ شبیہ، وہ صورت، وہ برکات حاصل ہے. حالانکہ اس سے کہیں بڑھ کر پرانے عہد نامہ میں روح القدس کی قدرت ایمانداروں میں سکونت نہیں کرتی، لیکن موجودہ چرچ ایج میں، موجودہ ایمانداروں میں روح القدس سکونت کرتا ہے، خدا باپ سکونت کرتا ہے. اور شاگرد کو کس کی مانت بننے کی ضرورت ہے؟ کہ شاگرد اپنے استاد سے بھڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل یعنی کہ تیار ہو جائے تو اپنے استاد جیسا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں، ہم نے اس حوالہ پر پہلے بھی سیکھا تھا، فلپیوں اس کا 2:5 میں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیں. ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. مسیح یسوع کا مجاز کیسا تھا؟ یسوع مسیح کا زندگی کا مقصد بنی انسان میں سکونت کرنا، اس زمین پر بسر زندگی بسر کرنا، اس زمین پر انسانی صورت اختیار کرنا. یسوع مسیح یہاں پر کوئی اور کام یا اس دنیا کو دیکھنے نہیں آیا کہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس دنیا میں آیا کہ انسان بنے اور اپنی زندگی سے خدا باپ کا مقصد، خدا باپ کی مرضی اور خدا باپ کا منصوبہ پورا کرے. آج آپ کی زندگی کا منصوبہ، مقصد اور مرضی کیا ہے؟ آپ نے کون سی مرضی اپنی زندگی میں اپنائی ہے، اپنی یا خدا باپ کی؟ آپ کا مقصد کیا ہے، اپنے آپ کو جلال دینا یا خدا باپ کو جلال دینا؟ آپ کے منصوبے کیا ہیں کہ اس جلال کے بادشاہ کے منصوبے پورے ہوں یا آپ کے؟ آج کے دور میں بہت سے مسیحی صرف اور صرف मसीही जिंदगी को उन्होंने एक स्टेज ड्रामा समझ लिया है कि स्टेज पर आए, अपना रोल किया और बात खत्म। मसीही जिंदगी ऐसी रफाकत है जो इस दौर में बख्शी गई है, ये ऐसी अजीम बरकत है ईमानदारों के लिए बख्शी गई कि वो खुदा की मानद, उसके बेटे की मानद बने। और लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। जैसे खुदा ने यसु मसीह को आला नाम बख्शा, अपनी दाई हाथ उसे बिठाया है, उसे वो नाम बख्शा जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, हर एक जबान उसका इकरार करेगी, वैसा ही रुतबा, वैसा ही इख्तियार और वैसी ही बरकत वो चाहता है कि हम मसीह के जब हम शक्ल बने, यानी के फतामंद जिंदगी गुजारें, तो हमें हासिल होंगे, हमें वो बहुत से एजाज, बहुत से अनाम, बहुत से अजर बाइबल मुकद्दस में देता है। लेकिन ये तब ही मिलेंगे जब उसकी मर्जी को, उसके मकसद को मसीह के हम शक्ल बनते हुए अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। रूहुल कुद्दस हमें इसीलिए बख्शा गया है कि यीशु मसीह के हम शक्ल बने, कि यीशु मसीह के हम शक्ल बने। पालूस रसूल क्या कहता है गलतियों 2 बाप उसकी 20वीं आयत में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। हर एक ईमानदार यीशु मसीह में जब ईमान लाता है तो वो उसमें नया बनता है, पुरानी इंसानियत का दम घुट जाता है, वो मौत को सामना करती है लेकिन नई जिंदगी उसमें जारी होती है। और पालूस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है बुनियादी बात कि जब हमारी जिंदगी में सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो हम पालूस की तरह कहने वाले बनेंगे कि मैं अपनी ख्वाहिशों के बायस, अपनी मर्जी के बायस, अपने घराने को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं जीता बल्कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और पालूस रसूल क्रंथियों के खत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो बहुत ही हैं, सब ही हैं, मगर अनाम एक ही ले जाता है। वो कहता है कि इस दौड़ में जो दुनिया की दौड़ है इसमें दौड़ने वाले बहुत हैं और दुनिया में अनाम, दुनिया में अजर, दुनिया में इज्जत, दुनिया में अच्छी रहने के लिए जगह के लिए वो दौड़, वो सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पालूस कहता है कि अनाम एक ही ले जाता है, वो दुनिया की उस दौड़ को जो के सिर्फ और सिर्फ आरजी सेहरे के लिए है, आरजी ताज के लिए है, आरजी शोहरत के लिए, अजमत के लिए है, वो कहता है कि उसमें से एक ना एक जीतता है। लेकिन वो कहता है कि ऐ ईमानदारों, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। ईमानदारों को ये दौड़ सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, बाइबल मुकद्दस जो नक्शे के तौर पर हमें दी गई है कि उस सफर को किस तरह तय करना है, ये मसीही सफर बहुत ही मुश्किल है और इसके लिए हमें नक्शे की जरूरत है। और नक्शा हमारे लिए तहरीरी कलाम, तहरीरी मुकाशफा, बाइबल मुकद्दस हमें सौंपा गया है, 66 किताबों का मजमुआ जो अपनी असली जबान में खुदा का अल्लाही मुकाशफा है, बनी इंसान को दिया गया। ताकि उस दौड़ को दौड़ें, और दौड़ दौड़ने के लिए हमें जो कुव्वत और ताकत दी गई है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत और ताकत दी गई है, ताकि उस कुदरत में दौड़ें। क्योंकि ये दौड़, ये जंग जिसे दौड़ के तौर में भी बाइबल मुकद्दस कहती है और रूहानी जंग भी कहती है, जिसमें हमें फाते ठहरना है, ख्वा वो दौड़ है ख्वा वो जंग है, उसमें एक ही नाम हासिल होता है, फाते। यीशु मसीह ने जो फतह हमें दी है उस फतह में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। ये यीशु मसीह की जंग है और इस जंग को वो खुद ही लड़ेगा, हमें सिर्फ जरूरत है दस्तियाब होने की। और दस्तियाब होने के लिए दो बुनियादी बातें जरूरी है, खुदा का कलाम और रूहुल कुद्दस की मामूरी। और कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं और अनाम एक ही ले जाता है, तुम भी इसी तरह दौड़ो। वो कहता है कि मेरी दौड़ इस दुनिया की चीजों के लिए या दुनिया के ताज के लिए नहीं जो मुरझाने वाला है। आज बहुत से लोग खिदमत को शुरू करते हैं इस बिना पर कि वो दौलतमंद बन जाएं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, फरेब देने के लिए उन्होंने अपनी खिदमत को शुरू किया है, जो सिर्फ इस दुनिया का सेहरा या इस दुनिया के नाम, दौलत ऐशो इशरत को हासिल करने के लिए है। उनके लिए बाइबल मुकद्दस में कोई भी अजर नहीं, बाइबल मुकद्दस उन्हें मलामत ही करती है। पालूस कहता है उस ताज के लिए दौड़ो जो अबदी और अपने बाप खुदा के हजूर जब हाजिर होंगे तो उससे हासिल होगा, और वो कहेगा वेल डन मेरे बच्चों, मेरे बेटों और बेटियों, तुमने मेरी मर्जी को पूरा किया, तुमने वो फतेहमंद मसीही जिंदगी गुजारी जो मैंने तुमको बख्शी। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हमें अनामात के बारे में जिक्र मिलता है। आज आपसे इस थोड़े से वक्त में वो तमाम अजर जो बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को हासिल है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें। दूसरा तिमोथियुस उसका चार बाप, हम जब पहली आयत से आठवीं आयत तक देखते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो पौलुस रसूल तिमोथियुस को तकीद करते हुए कहता है कि खुदावंद खुदा अपनी अदालत में आएगा, और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कलाम की मनादी करने और वक्त बा वक्त मुस्तहिद रह और हर तरह से तहम्बल तालीम और समझा दे और यहां तक के मुलामत कर और नसीहत कर, क्योंकि वक्त ऐसा आएगा कि लोग अच्छी सही तालीम को ना सुनेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस बहुत से उस्ताद बना लेंगे, बहुत सी गलत तालीमों के पा पीछे भागेंगे। और ऐसा ही है, जब कोई सही तालीम सुनाता है तो सबसे बड़े जो दुश्मन है वो मसीही मसीहियों के दुश्मन होते हैं। कैसे किसने इख्तियार दे दिया, इसे किस तरह ये औदा मिल गया, ये किस तरह ये इख्तियार मिल गया, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, इसके पास ये बात नहीं वो बात नहीं, ये खिदमत खुदा की है और हर एक बुलावा खुदा की तरफ से है। हमें खुदा बनने की जरूरत नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है। अगर कोई बहन भाई बच्चा मसीही जिंदगी को शुरू करता है तो उसे नसीहत करने की जरूरत है कि तुम्हारे लिए वो ताज रखा हुआ है जो तुम हासिल कर सकते हो। और ये ताज क्या है, पौलुस रसूल कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। यहां पर आप जब पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस चार बाप उसकी पहली आयत से आठवीं तक, आप पर सारा मफहूम जाहिर हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मेरे कूच का वक्त आ गया और मेरे लिए रासबाजी का वो ताज, ये ताज हर एक ईमानदार हासिल कर सकता है। और इस ताज को कैसे हासिल करेंगे, फतेहमंद जिंदगी की बुनियाद गुलामे खुदा और रूहुल कुद्दस की मामूरी में जिंदगी गुजारना है। नंबर दो, पौलुस रसूल कहता है फिलिपियों उसका चार बाप उसकी पहली आयत में जो ईमानदार खुदा के कलाम को सुनते रहे और इस बात पर क्या रहे मुत्तफिक रहे और उन्होंने खुदावन के कलाम पर भरोसा किया और मसीह के हम शक्ल बनते रहे। तो फिलिपियों के खत में पालूस रसूल कहता है उसका चार बाप पहली आयत में, इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ईमानदारों से बात करता है, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हैं, ऐ प्यारो खुदावन में इसी तरह कायम रहो। हमें खुदावन में कायम रहने की जरूरत है ताकि हम आपकी जिंदगी में कोई भी ख्वाह कोई मुबशर भाई कोई पास किसी के वसीला से आप यीशु मसीह की पहचान में निजात तक पहुंचे हैं, आप उनके लिए इज्जत और खुशी का ताज बनेंगे। इसी तरह आप जब किसी को यीशु मसीह के पास लाएंगे तो आपके लिए वो खुशी और एजाज का बायस होगा आसमानी मकामों पर। नंबर वन। नंबर दो, पहला थसलीकियों उसका दो बाप उसकी 19वीं और 20वीं आयत में पालूस रसूल यहां पर बयान करता है कि हमने तुम्हारे दरमियान जो खिदमत की वो तमाम दुख तकलीफ सारी जांफिशानी जो खुदा की खुशखबरी के लिए की, तुम्हें नसीहत की, हमारी तालीम में हमारी जिंदगी में कहता है कि नापाकी और फरेब ना पाया गया, बल्कि क्या कहता है कि जैसे खुदा ने हमको कबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की वैसा ही हमने बयान किया, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिल को आजमाता है। वो कहता है क्योंकि तुमको मालूम ही है ना कभी हमारे कलाम में खुश आमदी पाई गई और ना वो लालच का पर्दा बना, खुदा उसका गवाह है। वो कहता है कि हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते और ना ही तुमसे, और ना ही हमने तुम पर बोझ डाला, बल्कि मेहनत मजदूरी करके तुम्हें नमूना दिया ताकि तुम हमारा ताज बनो। और 19वीं आयत में कहता है ईमानदारों से, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फखर का ताज क्या है। पहला सवाल पूछता है ईमानदारों से, क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। वो थसलीके के ईमानदारों को इस बात को जताता है कि तुम हमारा फखर का ताज हो। हमें भी ऐसी खिदमत को अंजाम देने की जरूरत था कि हमें फखर और उम्मीद और खुशी हासिल हो खुदा बाप की हजूरी में। यीशु मसीह कहे कि बहुत अच्छे, तुमने उस मकसद को उस मंसूबा को अपनी जिंदगी में पूरा किया। नंबर तीन, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा तिमोथियुस चार बाप उसकी 7वीं आयत से 8वीं तक पालूस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। हमें ईमान को महफूज रखने की जरूरत है ताकि उस रासबाजी के ताज को हासिल करे जो आदल मुनसब खुदावंद उस दिन देगा। ना सिर्फ पालूस कहता है मुझे, बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के, यानी कि जो उसके मुंतजिर हैं, यानी कि जो उसका इंतजार करते हैं, ईमान को महफूज रखते हुए अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं और उस कुश्ती को उस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें भी ये फखर का ताज ये रासबाजी का ताज हासिल होगा। नंबर चार, यकूब इस बात को बयान करता है। देखें यकूब पहला बाप उसकी 12वीं आयत में वो कहता है कि ईमानदार जो दुख मुसीबत तकलीफ में गालब आता है उसके लिए कौन सा ताज है। लिखा है 12वीं आयत में, मुबारक है वो शख्स जो अजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा यानी कि गालब आया ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے والوں سے وعدہ کیا ہے ہر طرح کی دکھ مصیبت تکلیف میں. صرف اور صرف یہی دھن ہونی چاہیے, یہی ہمارے ڈھول کی بیٹ ہونی چاہیے کہ سارا جلال ہر دکھ ہر تکلیف میں یسوع مسیح کے نام کو ملے, تاکہ یہ زندگی کے تاج سے مراد ابدی زندگی کا تاج نہیں بلکہ یونانی میں زوئے لائف یعنی کہ روحانی زندگی, دکھ تکلیف میں اس روحانی زندگی میں قائم رہنا اور کہنا کہ خدا باپ میرے سارے دکھ تکلیف میں تیرے نام کو جلال ملے, تو وہ ہمیں زندگی کا تاج جسے کہ روحانی زندگی میں قائم رہنا, دکھ و مصیبتوں میں غالب آنا اور صرف خدا کی قدرت پر تکیہ کرنا, اس کے باعث زندگی کا تاج حاصل ہوگا. اور اسی طرح مکاشفہ 2:10 میں بھی ہمیں دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا باعث وفادار رہنے کے باعث, جب ہم وفادار رہتے ہیں تو ہمیں زندگی کا وفاداری میں زندگی کا تاج حاصل ہوتا ہے. پانچواں تاج جو پاسٹر صحبان کے لیے ہے بائبل مقدس سے بڑے واضح طور پر کہتی ہے, میرے ساتھ نکالیں پہلا پترس اس کا 5 اس کی 2-4 تک. یہاں پر پترس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے, یعنی کہ پاسٹر صحبان کو وہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم کو جو گلہ یعنی کہ لوگ جو کلیسیا خدا نے دی ہے اس کی نگاہ بانی کرو. کس طرح؟ لاچاری سے نگاہ بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے خدمت کرنے کی ضرورت ہے, نجائز نفع یا کسی طرح کی چیز کی بنیاد پر نہیں. ہماری اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں پاسٹر ہیں لیکن بہت کم پاسٹر اس تاج کو حاصل کریں گے جسے جلال کا سہرا کہا گیا ہے. یہ وہ جلال کا سہرا بہت کم لوگ حاصل کریں گے. تیسری آیت کو دیکھیں میرے ساتھ, اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں, کون سے لوگ؟ ایمانداروں کو یعنی کہ کلیسیا کو, ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو. اپنی زندگی سے ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے ان کے لیے نمونہ بننے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جیسا ہمارا چرواہا یسوع مسیح ہے ہم اس کی آواز کو پہچانتے ہیں. جب پادری صحبان خدا سے ایماندار ہیں اور ان کی خدمت کی بنا ایمانداری پر اور دلیری پر اور محبت پر اور خدا کی مرضی پر ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ پترس رسول کیا کہتا ہے کہ ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو. اور جب سردار غلہ بان کون؟ یسوع مسیح ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں. بائبل مقدس میں یہ 5 یہ 5 جن میں سے 4 خواہ کوئی مبشر ہے, خواہ پادری صحبان ہے, خواہ کوئی ایماندار ہے, خواہ کوئی ڈیکن ہے, ہر ایک ایماندار کے لیے یہ چیلنج ہے, یہ موقع ہے کہ اس تاج کو حاصل کرے. اور صرف 2 بنیادی باتیں, خدا کے کلام کے ساتھ ہر روز قائم رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور جب اس سے جڑے رہیں گے اس میں قائم رہیں گے تو روح القدس کا پھل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوگا. اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ مسیح کے ہم شکل بنیں گے, اور جب مسیح کے ہم شکل بنیں گے تو उसमें खुशी का और फख्र का ताज है, उसके बाद जलाल का ताज है, मुसीबतों में गालबाने का ताज है और रूहानी जिंदगी का ताज है, और फिर रास्तबाजी का ताज है, और जो पासबान सहबान के लिए है वो ये ताज है, जलाल का ताज। आज मैं नहीं जानता कि आप जो पासबान हैं, कुछ जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किया है जो कि कानूनी तौर पर पादरी सहबान है, और कोई और भाई जो के कोर्स कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस बड़े वाजह के तौर पर कहती है कि दुनिया को खुश करने के लिए या लाचारी से निगाहबानी ना करो, अभी से अपने आप को तैयार करो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खुशी से यानी कि कोई भी दिल में बुरी ख्वाहिश, सोच और नजायज नफे के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से खुदा की खिदमत करो। और जो भी लोग आपको हासिल हैं, ख्वा वो एक भेड़ है, दो भेड़ हैं, गला निगेबान की तरह उस भेड़ की निगाहबानी करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि पादरी सहबान से ज्यादा पूछताछ होगी, ख्वा वो मैं हूं कोई भी है, उनसे पूछताछ होगी, और अगर वो इस काबिल ठहरे कि उन्होंने खुदा की खिदमत लाचारी से नहीं बल्कि दिली शौक से खुशी से की है, नजायज नफा से नहीं बल्कि इस बुनियाद पर की है कि उसके नाम को जलाल मिले, तो वो जलाल का ताज हासिल करेंगे। आपको जो भी लोग हासिल हैं, वो 10 हैं, 20 हैं, उन ईमानदारों को हर रोज खुदा के कलाम से शेर कीजिए। आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि ये जलाल का ताज ऐसे ही नहीं मिलेगा। और पालूस रसूल बड़े वाजह तौर पर कहता है कि मैं खुदावन के लिए हर वक्त मुहैया हूं। हमें जो खादम हैं, जो निगाबान हैं, जो मुबशर हैं, हम इस पर सीखेंगे रूहुल कुद्दस में कौन सी नेहमतें और खिदमात मौजूदा कलीसिया को हासिल है और कौन सी हासिल नहीं है। हम अगला सब्जेक्ट हमारा यही है, रूहुल कुद्दस की नेहमतें जो रूहुल कुद्दस हमें ईमानदारों को देता है, इसमें सीखेंगे। लेकिन आज जो पासबान सहबान हैं, उनके लिए ये ताज है, ये ताज जलाल का ऐसा सेहरा है जो मुरझाने का नहीं, और जब यीशु मसीह आएगा तो वो कहेगा, मेरे बेटे मुबशरों, खादमों, डीकनों, पादरी सहबानों, बिशबो, जो भी तुम्हारा टाइटल है, जो भी तुम्हारा नाम है, अगर तुम ने अपने काम को रूहुल कुद्दस की बुनियाद पर, अपने काम का रद्दा उसकी बुनियाद पर रखते हुए उसमें किया है, तो अजर पाओगे। और उसके अलावा बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो काम सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए किया जाएगा, पालूस रसूल से कहता है कि वो उस वक्त आग में जलाया जाएगा। उनके सामने उनकी सारी रासबाजी, जो उनकी अपनी बुनियाद और अपनी सोच या अपने आप को खुश करने या दुनिया को खुश करने की बुनियाद पर है, वो सब आग में डाली जाएगी। और इसके लिए पालूस रसूल पहला करंथियों 3 उसकी 10वीं आयत से 15वीं आयत तक कहता है, लेकिन आपके लिए पढ़ूंगा कि लिखा है, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा 13वीं आयत में, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा उसका काम बताएगा, और आग खुद हर एक का काम आजमाएगी के कैसा है, जिसका काम उस पर बना होगा बाकी रहेगा और वो अजर पाएगा। यानी कि यीशु मसीह पर जिसका काम बना होगा, यीशु मसीह के कलाम की रहनुमाई में और रूहुल कुद्दस की कुदरत में किया जाएगा, वो अजर पाएगा। बाकी सारा काम हमारी आंखों के सामने, ख्वा मेरा काम है, किसी और का खिदमत है, वो आग में जलाया जाएगा, और आग उस काम को جانچے گی, اور یہ ہے یسوع مسیح کی تخت عدالت کا ویو پوائنٹ جو پالوس رسول دیتا ہے. سو آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور اپنے آپ کو جانچے کہ ہماری خدمت کس بنیاد پر ہے. دنیا کے لیے ہے, اپنے لیے ہے, اپنے گھرانے کو خوش کرنے کے لیے ہے, یا پھر کس کے لیے ہے, یا اس خداوندوں کے خدا اور جلال کے بادشاہ کے لیے ہے. آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں. خدا باپ, آج کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر ہو, اور ہم سب کو خاکسار بنا تاکہ ان سچائیوں کو سیکھتے ہوئے فتح مند زندگی گزاریں, اور جب تو اس زمین پر آئے تو تیری حضوری میں یہ الفاظ سننے کے لیے تیار ہوں کہ بہت اچھے تم نے اس دوڑ کو ختم کیا اور میری قدرت کو استعمال کیا. خدا باپ, ہم سب کو بڑی حکمت اور تنائی دے تاکہ مسیحی زندگی کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.